नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।